Okay. So, okay. Thank you so much, sir, for agreeing for this interview. I won't take much of your time, but before we begin, I would like you to begin with a round of your introduction with your name, which college do you teach in, and like you're the principal, so that, and your area of specialization, and which courses do you teach in your program.
Yeah, ma'am. First of all, my name is Vilas Prakash Kadale. Basically, I belong to a diet lecture. But few months ago, I take a charge of principal of D.Ed. College, which name is Government D.Ed. College, in bracket Old Dipti, Itwara, Amravati.
Okay, sure. And what are
Basically,
the
my subject is geography.
okay. And so how long are you associated with the DEd College?
One year, ma'am, just 1 year.
One year.
One
Okay.
year.
And before that, you were teaching in the same college?
No, ma'am, no.
Okay, so it's been 1 year that you're part of the DEd College.
Before that, I told you I'm basically a lecturer.
Right.
Lecturer, where lecturer belongs to diet,
Right.
this thing institution,
Okay.
right.
So now that you are for the past 1 year, you're part of the DEd College of Amravati, what all are the
Yes, ma'am.
programs that your institute offer along with DEd?
Programs.
Yes.
Basically, you know that the present situation of schooling are very bad right now.
Right.
It means before 1 year, it is fully locked down within a month. That's why I just face to face toward the student just 1 or 2 months. Only 1 or 2 months, यानी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने बच्चे मेरे सामने आए हैं. अदरवाइज जो ऑनलाइन हमारा जो शेड्यूल था उस शेड्यूल के हिसाब से हम चलते थे. 2 महीने में मैंने कुछ नया करने के लिए ट्राई किया. वहाँ पे
ओके
बेसिकली वहाँ पे बच्चों जो थे वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे या टीचर्स बेसिकली वहाँ पे जो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो है ही नहीं.
राइट
इवन दो टीचर्स भी नहीं वहाँ पे. तो मैं जाने के
राइट
बाद मैंने CHB पे कुछ अफोर्ड किए. टीचर्स फोर टीचर्स अफोर्ड किए. उसके बाद में टीचिंग चालू हुआ बच्चों का. वो स्टार्टिंग में ऑनलाइन था. जब बच्चे डायरेक्टली फेस टू फेस आ गए कॉलेज में तब हमने वहाँ पे कोशिश की. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वहाँ पे जो हमारे डाइट के लेक्चरर्स हैं उनको एज अ गेस्ट वहाँ पे बुला के हमने ICT का पूरा बच्चों का जो फाउंडेशन होना चाहिए यानी कैसा होता है कि वो बच्चे सेमिनार लेते हैं लेकिन सेमिनार वो कैसे लेते हैं ऐसे ही जस्ट जो क्वालिटी होनी चाहिए सेमिनार्स की वो ऐसे ही होती थी. यानी क्लास में जाए बच्चे 5 10 मिनट बोले वहाँ पे. हमने वहाँ पे उनको ट्रेनिंग पहले कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते कैसे है. एक दो दिन उनको ट्रेन करने के बाद में फिर बच्चे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया उसमें. और जो अवेयरनेस होना बच्चों का वो भी नहीं था पहले तो बाद में वो अच्छी तरह से हो गया. ऐसे नियर अबाउट 15 दिन तक हम लोग पूरा वर्कशॉप वहाँ पे अरेंज किया था और उस 15 दिनों में वो हो गया. उसके बाद में दूसरे दूसरे दिन से हमने जो टीचिंग एड्स यूज करते हैं बच्चे वो टीचिंग एड्स के लिए कॉम्पिटिशन हमने रखा. उसके बाद में बच्चों, मेरे हिसाब से जो बच्चों का कंटेंट नॉलेज जो होना चाहिए, यानी हम डीएड में क्या करते हैं, बच्चों को पैडागोजी यानी पढ़ाना कैसे है ये बताते हैं वहाँ पे, लेकिन जो कंटेंट नॉलेज है उनका उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते वहाँ पे। बेसिकली वो होना चाहिए बच्चों में जो कंटेंट, यानी फर्स्ट टू एट तक अगर वो एज ए टीचर बन रहा है आगे चल के, और तो उसकी मास्टरी होनी चाहिए कंटेंट के ऊपर। तो हमने 4 और 5 ग्रुप्स में बच्चों को उसमें बांट दिया और उनके दो चार से कंपटीशन लिए कंटेंट के ऊपर। उसके बाद में पोस्टर मेकिंग पोस्टर का एक कंपटीशन बच्चों का रखा था। उसके बाद में वेंटेल वेंटेल थ्रू कुछ प्रैक्टिसेस हमने बच्चों की ली। उसके बाद में जो बच्चे प्रॉपरली स्कूल पे जाके जो पढ़ाते हैं, तो वो ऐसे ही जो हमारी ट्रेडिशनल जो टीचिंग है उस तरह से पढ़ाते थे। लर्निंग आउटकम्स पे ज्यादा फोकस, यानी उनको पता ही नहीं था लर्निंग आउटकम्स क्या है, वो लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से कौन सी क्लासरूम प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो उसके ऊपर हमने थोड़ा काम किया और इजीली बच्चों को वो सब पसंद आया, और उसके हिसाब से लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से बच्चों ने काम स्टार्ट करना या उसके ऊपर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर से एक बार ये लॉकडाउन आने की वजह से फिर से एक बार बच्चे पर्दे के पीछे चले गए, ऐसा बोल
हाँ
सकते हैं। और
सर,
ये जो
एक्चुअली
ऑनलाइन का है वो
मैं पूछ रही थी, आपका डीएड का कॉलेज जो है वो डीएड के अलावा और कोई प्रोग्राम ऑफर करता है क्या? मतलब जैसे बीएड हो गया, एमएड हो गया, या बीएड स्पेशल एजुकेशन हो गया, या कोई और ऐसा प्रोग्राम ऑफर करती है आपकी यूनिवर्सिटी?
नहीं मैम, जस्ट ओनली डीएड,
ओनली
ओनली डीएड,
डीएड, ओनली डीएड,
ओनली
ओके।
डीएड।
और सर, एनसीटी से अप्रूव्ड कितना इनटेक होगा आपके डीएड में?
40 मैम, 40
तो एक यूनिट में 40 स्टूडेंट्स का अप्रूवल है 1 साल के लिए।
फर्स्ट ईयर में, 40 और सेकंड ईयर में 40, तो 40 आउट ऑफ 39 और सेकंड ईयर का 38, ऐसा स्ट्रेंथ है हमारा फिलहाल।
ऐसा स्ट्रेंथ है। और ये 2021 का बैच है या 2020 का?
ये 2020 में आया था ये वाला बैच, अभी
तो
फर्स्ट ईयर में, अभी फिलहाल जो 21 में जो अभी एडमिशन किया है वो फर्स्ट ईयर में है, और जो पिछले साल थे वो सेकंड ईयर में फिलहाल।
ओके, तो सर 2019 का कितना एडमिशन होगा लगभग?
अप्रोक्सीमेटली वही होगा मैम, यानी 40
38-39 होगा।
या
ओके ओके सर। सर तो और थोड़ी जानकारी चाहिए थी, मतलब किस तरीके के स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यानी कि कौन से बैकग्राउंड से आते हैं? मतलब लैंग्वेज हो गया, या आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, किस तरीके, कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड से बच्चे आपके यहाँ पे आते हैं?
बेसिकली ये जो कॉलेज मैम हमारा ये है उर्दू मीडियम का कॉलेज। बेसिकली जो साइंस के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर आ जाते हैं इस साइड में, और ज्यादातर बच्चे रूरल बैकग्राउंड से हैं, यानी जो ग्रामीण भाग होते हैं हमारे, तो वहां से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पर।
जी। अच्छा, तो सर जैसे मतलब मैथमेटिक्स से ही ज्यादा है या लैंग्वेज या कॉमर्स से भी है?
वैसा 5-6 बच्चे 5-6 बच्चे बिलोंग करते हैं कुछ लैंग्वेज के ऊपर, थोड़ा ये कुछ मैथमेटिक्स के ऊपर, यानी ऐसा ये मिक्सअप वो होता है मेरे
अच्छा,
ख्याल से।
ओके ओके। और सर, आप उन बच्चों का एकेडमिक क्वालिफिकेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मतलब हम कहते हैं ना, फर्स्ट क्लास मार्क्स से इतने बच्चे आ रहे हैं या सेकंड क्लास से इतने बच्चे आ रहे हैं, तो आपका असेसमेंट क्या है आपके बच्चों के एकेडमिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लेकर?
सॉरी मैम, आई कैन अंडरस्टैंड।
हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि अभी जैसे कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट क्लास पास होकर आ जाते हैं, कुछ बच्चे
यस
हैं
मैम।
जो उनसे थोड़े कम होते हैं वो आते हैं, तो आपका अनुमान क्या है आपके बच्चों के एकेडमिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लेकर?
ओके 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 जैसे मेरे नजर में आया है हमारे यहाँ पे जो अच्छा जो उनका स्ट्रेंथ है, यानी 90 के अबव भी बच्चे एडमिट हो जाते हैं स्टार्टिंग में, पहले एक दो राउंड में 90 के अबव भी बच्चे आ जाते हैं। चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो आर्ट से हो
जी,
और उसके बाद में फिर 80% तक आ जाते हैं सभी बच्चे।
अच्छा।
मराठी मीडियम जो है उसमें थोड़ा अलग है, उसमें नियर अबाउट 45 से ऊपर आते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा तगड़ा कंपटीशन है उर्दू मीडियम के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे ये दिखाई देता है मुझे कि ज्यादातर जो हाईली स्ट्रेंथनिंग जो एकेडमिक्स जो बच्चों का है वो डीएड में आ जाते हैं।
अच्छा अच्छा।
उसके अपोजिट में मराठी मीडियम में आपको थोड़ा अलग वहाँ पे पिक्चर दिख सकता है।
राइट, तो आप कह रहे हैं आपके यहाँ पे उर्दू मीडियम के स्ट्रॉन्ग है बच्चे। ओके ओके। और सर आपके स्टूडेंट्स का एकेडमिक प्रोफाइल बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से अगर कंपेयर करना चाहेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा?
एकेडमिक अच्छा है इन बच्चों का,
मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके डीएड कॉलेज का समझिए कि 85-90% है और बाकी कॉलेज का 70% है या 100% है, तो इसका डिफरेंस में क्या रीजन हो सकता है?
डिफरेंस मैम यही रीजन हो सकता है कि यहाँ पे एक ही कॉलेज है ना उर्दू मीडियम का।
ओके।
और जो मराठी मीडियम है बाकी बहुत सारे कॉलेजेस है
जी,
तो यहाँ पे जो और दूसरी एक बात, यहाँ पे ज्यादातर मेरे हिसाब से जो गर्ल्स है वो आ जाती है यहाँ पे, या वो उनके लिए थोड़ा सूटेबल होता है शायद, तो उनका उनकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है।
हाँ।
और एकेडमिक्स भी उनका वो अच्छा है।
अच्छा है।
तो ये रीजन हो सकता है कंपटीशन का।
ओके।
यहाँ पे एक ही कॉलेज है इसलिए जो जिनका अच्छा एकेडमिक्स हो या जिनके अच्छे मार्क्स हो, जिनके अच्छे परसेंटेज हो, वो बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। और दूसरी तरफ जो मराठी मीडियम है वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज होने की वजह से उनके एडमिशन भी नहीं होते, यानी मेरे बाजू में भी दो चार मराठी मीडियम के कॉलेज है, वहाँ पे 20-25 ऐसे एडमिशन है वहाँ पे।
पर
हमारे यहाँ पे
डीएड
फुल
के ही
स्ट्रेंथ
कॉलेजेस है मराठी मीडियम के।
या मैम।
ओके ओके। तो सर मेरा एक्चुअली नेक्स्ट सवाल वही था कि आपने अभी जैसे कहा ना कि लड़कियां ज्यादा है, तो अगर इसका प्रोपोर्शन देखा जाए तो फिर 5 लड़कियों में कैसा, मतलब आप कैसे प्रोपोर्शन बिठाएंगे आपके मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का?
मैम 90% गर्ल्स है और जस्ट 10% बॉयज है।
ओके ओके सर। ओके अच्छा अच्छा ठीक है। तो और सर मतलब ये एडमिशन होती कैसे है सर डीएड कॉलेजेस में बच्चों की, मतलब कोई कॉमन टेस्ट होता है या आपके यूनिवर्सिटी का कोई टेस्ट है? आप सर आपका कॉलेज अमरावती यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होगा ना?
नहीं मैम, एक्चुअली जो डीएड जो होता है ना
जी
वो उसको अफिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ती यूनिवर्सिटी की, उसको अफिलिएशन पड़ती है एससीईआरटी, एमएससीईआरटी पुणे, और उसके बाद में एनसीटी।
अच्छा, तो ये तीन, तो एससीईआरटी, एनसीटीई और
जस्ट एनसीटी और एमएससीईआरटी।
अच्छा, तो स्टेट यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ती अफिलिएशन की?
नहीं नहीं मैम, अफिलिएशन की जरूरत नहीं है।
ओके ओके ठीक है। हाँ तो सर आप कह रहे थे बच्चे कैसे एडमिट होते हैं आपके यहाँ पे, सर क्या प्रोसेस होता है?
कोई सीटी वगैरह नहीं होती मैम, जो उनके 12th के जो परसेंटेज है
ओके
उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन हो जाता है, और वो एक सेंट्रलाइज प्रोसेस ऑर्गेनाइज करती है एससीईआरटी, और उसके थ्रू वो सारी प्रोसेस होती है।
ओके तो सर डीएड मतलब बीएड के बाद का डिग्री है राइट?
नो मैम, आफ्टर ट्वेल्थ
का डिग्री है
बच्चे डीएड करते हैं, यानी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी इट मींस फर्स्ट टू एट तक वो डीएड। बीएड जो है वो सेकेंडरी के लिए, यानी नाइन्थ टेंथ के लिए।
के लिए. ओके तो सर ये जो 12th का मार्क्स है उसका एक पास परसेंटेज होता होगा, मतलब इतने परसेंट के ऊपर के बच्चों को ही डीएड में एडमिशन मिलता होगा, कुछ ऐसा है क्या?
उसमें मिनिमम जो है परसेंटेज का वो है 45% उसके
अच्छा,
ऊपर होना चाहिए।
तो ये 45 एग्रीगेट है, हर सब्जेक्ट में 45 नहीं
हाँ
चाहिए.
नो नो नो
ओके
एग्रीगेट 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 उसका 45 होना चाहिए, वही बच्चा उसमें फॉर्म भर सकता है। वो जो प्रोसेस है
अच्छा,
सिलेक्शन प्रोसेस, तो वो
ओके
एक क्राइटेरिया है उसके लिए। पहले
ओके. और सर
50 होता था लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने और उसको कम कर दिया, 45 तक बच्चे नहीं मिल रहे करके।
ओके और सर अभी जैसे आपने कहा कि 45% है और आपके पास 40 का सीट है, बराबर 40 का इंटेक है, तो अगर आपके पास ऑब्वियसली ज़्यादा ही बच्चे आते होंगे और उनमें से आपको चूज़ करना होता होगा 40 लोग बच्चों को, तो उसमें आप
यस यस मैम।
आपके कॉलेज के तरफ से कोई सिस्टम है क्या कि अभी एक एक परसेंटेज के 3-4 बच्चे आ गए, फॉर एग्जाम्पल अगर 60% के 3-4 आ गए, तो आप तीनों को सिलेक्ट करते हो या कैसे सिलेक्शन होता है सर?
नहीं, कॉलेज कॉलेज की तरफ मैम सिलेक्शन जो है बच्चों का वो होता ही नहीं है, वो होता है थ्रू SRT।
ओके
ओके प्रोसेस कैसा है, बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरते हैं।
जी
उसके बाद में उनकी जो भी परसेंटेज है वगैरह वो सब वहाँ पे मेंशन करते हैं, उसके जो प्रूफ्स होते हैं वो भी वो अपलोड कर देते हैं। यानी वो पूरा फॉर्म भरने के बाद फिर SCERT पुणे से वो सेंट्रलाइज प्रोसेस शुरू होती है। तो उसके एक दो राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में सपोज फर्स्ट राउंड में बच्चे फिर क्या करते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं बच्चों की, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो फिर बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं उनके कॉलेजेस का। ऐसा समझ लो कि मेरे पास 40 की ट्रेंड है, स्ट्रेंथ है, तो मेरी तरफ आने वाले 100 बच्चे ऐसे हैं कि जो चॉइसेस रखते हैं मेरे कॉलेज के लिए,
जी
लेकिन मुझे लेने कितने हैं, 40 लेने हैं। तो
बराबर
फिर वो जो 40 है वो फर्स्ट राउंड में वो 40 बच्चे जो मेरिट बेसिस पे वो सिलेक्शन करते हैं। पहले वाले जो मेरिट से मेरिट बेसिस पे जो आएंगे 40, वो उनका वो जो टैब है वो दे देते हैं कॉलेज के लिए। यानी उनके नाम फिर हमारा जो लॉगिन है उसके ऊपर दिखाई देते हैं। फिर हम जब वो बच्चे आते हैं तो उनको हम एडमिट कर लेते हैं। सपोज 40 बच्चे ने पहले बोला था कि मुझे ये लेना है, लेकिन 8 दिन के बाद मुझे उसे ऐसा लगता है कि मुझे ये कॉलेज नहीं लेना है, तो वो बच्चा फिर यहाँ पे आता ही नहीं। तो वो सीट एक खाली रखती है, खाली रख दी जाती है, और फिर हम SCERT को मेल कर देते हैं कि हमारे पास एक सीट रिमेन है। तो वो फिर से फिर जो नेक्स्ट वाला जो मेरिट के बेसिस पे जो नेक्स्ट बच्चा होगा वो हमारी तरफ उसको टैप कर दिया जाता है।
अच्छा, ओके ओके सर, समझा. ओके और सर कितने ऐसे बच्चे होंगे जो मैथ्स या साइंस लेते हैं और उनका प्रोफाइल क्या होता होगा?
आई थिंक वो 40% था मैम पहले।
ओके
यानी 50% साइंस, 40% आर्ट्स और 10% कॉमर्स। यानी जो इसके पहले हमारा जो उसके हिसाब से वो बेचते थे 50, 40, 10% ऐसा वेटेज दिया जाता था हर स्ट्रीम को। साइंस के लिए 50% वो चाहते थे, आर्ट्स के लिए 40% और कॉमर्स के लिए 10%, ऐसा वो प्रोपोर्शन था उसका।
अच्छा, ओके सर. ओके और सर डीएड अभी कितने साल का प्रोग्राम है?
2 साल का मैम
2 साल का है, तो मतलब और ये पहले से ही 2 साल का था कि अभी चेंज हुआ है?
नहीं, मैम पहले से 2 साल का है।
अच्छा, ओके. तो सर ये जो बच्चे हैं इनका सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल जैसे आप कह रहे थे, मतलब अगर अंदाज से देखा जाए तो कैसे होगा सर?
मैंने पहले ही कहा मैम, ये जो सारे बच्चे हैं वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं,
ओके, तो इसमें
तो
ये
हम
फर्स्ट
गेस कर सकते हैं कि
जेनरेशन
जो उनका
लर्नर्स
सोशियो
है क्या?
मैम आपकी आवाज थोड़ी
हेलो
मुझे कम आ रही है। ओके ओके
अभी आ रही है
ओके
सर?
मैम। हाँ अभी आ रही है
हाँ
मैम।
सर, मैं पूछ रही हूँ, नहीं आई अंडरस्टूड दिस की लो सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल से है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये फर्स्ट जेनरेशन लर्नर्स होंगे, मतलब इनके घर से यही है जो पहले मतलब इतना आगे तक पढ़े हैं, कि आपको लगता है कि और भी लोग हो सकते हैं इनके घर पे जिन्होंने पढ़ाई की होगी?
नहीं, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो वेल एजुकेटेड हो उनके घर वाले, लेकिन ज्यादातर मैम मेरे घर में कोई नहीं पढ़ा है, जस्ट मैं आ रहा हूँ टीचर बनने के लिए। ऐसे
ओके
बहुत ज्यादा मिलेंगे।
अच्छा ओके सर, ठीक है। और सर अगर ये जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं कॉलेज में, अगर वो टीचिंग में नहीं आते तो आपके हिसाब से उनके ऑल्टरनेटिव प्रोफेशंस क्या हो सकते थे फिर?
अल्टरनेटिव प्रोफेशंस उनके, अब वो कैसे बता सकते
नहीं सर, आपको पता होगा ना क्योंकि आप वहीं पर हैं, तो मतलब अंदाज से ही, ऐसा नहीं कि यही होंगे, लेकिन आपके हिसाब से
हैं
क्या हो सकते होंगे अगर वो बच्चे टीचिंग में नहीं आते तो?
बच्चे टीचिंग में नहीं आते तो, एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं तो वो एग्रीकल्चर बेसिस कोई तो भी वो काम कर सकते थे, या कोई बाहर भी जा सकता है अर्बन एरियाज में, वहाँ पे काम कर सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके उधर भी जा सकता है, कोई
ओके
बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह मेडिकल वगैरह इधर भी टीईटी पीईटी वगैरह प्रिपेयर करके उधर भी जा सकते हैं।
राइट राइट। तो सर अगर मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसके बावजूद अगर वो डीएड में आ रहे हैं, तो मतलब वो क्या मोटिवेट करता होता होगा उनको आने के लिए?
नहीं, एक तो उनका सेल्फ इंटरेस्ट या उनकी विलिंग ही होनी चाहिए कि मुझे टीचर बनना है,
एब्सोल्युटली।
या एक ब्रेड एंड बटर जिसे हम कहते हैं उसकी तलाश में शायद वो डीएड की तरफ आता होगा, कि ये शॉर्ट टर्म थोड़ी ये जॉब है कि हम थोड़ा सीख के 2 साल सीखे कहा तो भी हम जॉब कर सकते हैं, हम ट्यूशन ले सकते हैं,
जी ओके ओके ओके
ऐसा कुछ। नहीं,
राइट। तो सर आपके हिसाब से बच्चों को इस डीएड प्रोग्राम के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती होगी?
सबसे अच्छी चीज क्लासरूम प्रैक्टिसेस जो बच्चे करते हैं
जी
ना आखिर में, आप हम हर एक मंथ में 7 या 8 दिन या 1 वीक के लिए हम उनको क्या करते हैं, स्कूल में डायरेक्टली जाके बच्चों के सामने उनको पढ़ाने की ट्रेनिंग देते हैं। तो जब असलियत में जो जब बच्चे जाते हैं क्लासरूम पे तो उनको ज़्यादा क्या कहेंगे हम, वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, ऐसा मुझे लगता है।
अच्छा, और क्या ऐसी चीज होगी जो उनको थोड़ी दिक्कत होती होगी कोर्स से, प्रोग्राम से?
प्रोग्राम थोड़ा लेंथी है और हार्डवर्क ज़्यादा है इस प्रोग्राम में, तो शायद वो दिक्कत उनके लिए हो सकती है। मैंने अभी तक तो वही देखा गया है बच्चों की तरफ, क्योंकि प्रैक्टिकल्स बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है, बहुत सारे असाइनमेंट है, बहुत सारे थेरोटिकल्स के भी कुछ सेमिनार्स वगैरह यूट्यूब, ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम्स है उस इसके अंदर में, इस पूरे कोर्स के अंदर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो बच्चों को हम क्या करेंगे क्या कहेंगे उसको, कि रिलैक्सेशन का वक्त ही नहीं मिलता बच्चों को, तो वो उनके लिए मेरे ख्याल से वो थोड़ा ये होता होगा
तो 2 साल एकदम उनके पैक्ड होते होंगे।
पूरा 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 पैक
अच्छा, और सर आप अभी कुछ टाइम पहले टीईटी के बारे में आपने जिक्र किया था, तो बच्चों का ओपिनियन क्या है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर?
वैसे कभी पूछा नहीं बच्चों से उनका ओपिनियन क्या है, लेकिन एक अगर अच्छा टीचर हम सोसाइटी को देना चाहते हैं तो वो नेसेसरी है टीईटी।
अच्छा
क्योंकि जो जिनके पास एक वो टीचर एटीट्यूड है या टीचर एप्टीट्यूड जिनके पास है, अगर ऐसे बच्चे हमें सिलेक्ट करने हैं एज अ टीचर तो ये चीज अच्छी है, ऐसा उनको भी लगता होगा शायद।
अच्छा, और मतलब आपके ओपिनियन में जैसे आपने कहा कि अच्छा टीचर अगर हमें सोसाइटी को देना है तो टीटी जरूरी है, तो बच्चे सीखते क्या है एग्जैक्टली इस टीटी टेस्ट से?
टीटी से
जी,
नहीं, वो जो टीटी है मैम वो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देती है मेरे ख्याल से। कौन सा प्लेटफॉर्म? उसके पहले वो पढ़ाई करते हैं,
जी
अच्छे से पढ़ाई करते हैं टीटी प्रिपेयर करने के लिए। तो
जी
एक्चुअली बेसिकली वो जो सारी तैयारी होती है वो उनकी कोर्स की तैयारी होती है, कोर्स की
राइट
तैयारी होती है, जिसकी तैयारी अच्छी हो, जिसका वो प्रॉपर एप्टीट्यूड हो, प्रॉपर टीचर एटीट्यूड हो,
जी
तो ऐसे बच्चे उसमें से निकाले जाते हैं और वो एज ए टीचर बनने के लिए उनको चांस दिया जाता है। तो वो एक अच्छी बात है कि ऐसा कुछ हो रहा है।
अच्छा, तो आप ये जो बच्चे जो टीईटी के लिए बैठते हैं, आप उनके प्रेपरेशन के लिए कुछ अलग से करते हैं क्या आपके कॉलेज में? अच्छा,
मैंने इसी साल स्टार्ट किया मैम,
क्या किया है सर?
टी 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 के लिए स्टार्ट किया मैंने। एक्चुअली मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का था
ओके
और मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा है क्योंकि फैमिली वगैरह पूरी घर पे है और मैं अकेला वहाँ पे रहता हूँ,
अच्छा
तो मैं ज़्यादा टाइम उनको देता हूँ। जब वो 2 महीने मेरे सामने तो 5 के बाद में यानी 5 to 7 तक सारे बच्चे वहाँ पे, एक्चुअली वो सब विलिंगली था कि जिनको आना है वो आओ और जो अफोर्ड नहीं कर सकते आना, यानी कुछ पैसे वगैरह नहीं थे उसके लिए, लेकिन सारे के सारे कंपलसरी बच्चे वहाँ पे बैठे थे
ओके
विलिंगली, उनके विलिंगली। तो हमने यही स्टार्ट किया था कि टीटी में होता क्या है, तो पहले आपका जो पेडागोजी है
जी
उसके बेसिस का जो नॉलेज है वो
जी
आपका अच्छा होना चाहिए, तो वो कभी लेता था। उसके बाद में साइंस है यानी वेरियड सब्जेक्ट का ये कॉम्बिनेशन होता है वो टीटी, तो साइंस का जो साइंस के बच्चे उनके लिए वो आसान जाता था, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी ये उनके लिए टफ जाता था। तो फिर ये पूरा क्लबिंग करके हम वहाँ पे बच्चों को पढ़ा देते।
ओके ओके तो सर, आपके यहाँ से जब बच्चे पास आउट करके जाते हैं डीएड से, तो वो क्या आपके साथ टच में रहते हैं, या वो आके फीडबैक देते हैं आपको जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं कि सर जितना भी हमने 2 साल में पढ़ा उतने में से ये चीजें बहुत काम में आई, और कुछ ये चीजें जिसमें हम और थोड़ा और काम अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ आपके बच्चों के साथ होता है क्या?
नहीं, फिलहाल मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये सब पूरा काम मेरे लिए नया नया है, यानी एक ही साल होगा ना मुझे
जी
वहाँ
जी
पे ज्वाइन करते हुए। अभी तो पूरा एक साल ही नहीं हुआ, आई थिंक 9 और 10 मंथ्स का ये मेरा पूरा पीरियड है।
ओके, तो ये
तो
पहले
उसके
था क्या आपके पहले जो जो प्रिंसिपल रहे थे, उन्होंने आपसे कभी ये बताया कि ऐसा है ताकि आप उसको कंटिन्यू कर पाओ आगे?
एक्चुअली नहीं मैम, फ्रैंकली नहीं, वैसा
ओके okay.
कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ उनके साथ में, यानी उनको देखा ही नहीं मैंने।
अच्छा, ओके okay. तो सर मतलब पिछले अगर 2-3 बैचेस में देखा जाए तो लगभग कितने बच्चों ने टीटी या सीटेट के एग्जाम्स के लिए फॉर्म्स भरे होंगे?
कुछ गौर नहीं किया मैम इसके
ओके
रिगार्डिंग।
अच्छा, ठीक है। सर, आपके कॉलेज के अलावा और भी कॉलेजेस होंगे ना जो टीटी के लिए एलिजिबल होंगे?
हाँ मैम,
ओके, तो आपको वो पास रेट का कोई अंदाजा होगा सर उनके बच्चों का?
बहुत कम है मैम, 1 or 2% मोस्टली।
ओके, ठीक है सर। तो जो बच्चे आपके यहाँ से डीएड कंप्लीट करके जाते हैं, मतलब किस तरीके के जॉब्स को प्रेफर करते हैं और उनको जॉब्स मिलती कैसे है? मतलब आपके पास प्लेसमेंट सेल होता है या किसी स्कूल्स के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका टाई अप है कि वहां से लोग प्लेसमेंट्स करते हैं? कैसा होता है आपके यहाँ का प्रोसेस?
नहीं, वैसे कोई भी सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करते मैम। यानी प्लेसमेंट वगैरह वो इंजीनियरिंग में या बाकी अदर फील्ड में होता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ फिलहाल वैसा नहीं है कोई प्लेसमेंट का। यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं, फिर बाहर जाने के बाद उनका क्या होता है तो उनका वही जाने।
अच्छा, तो वो मतलब खुद से ही जॉब ढूंढते हैं?
या मैम, या
ओके, ऑन इंडिविजुअल लेवल वो खुद ही जॉब ढूंढ लेते हैं फिर?
यस।
अच्छा। और सर, ये हमने सुना है तो आपसे जानना चाह रहे थे कि यूजुअली ये कहते हैं कि जब बच्चे पास आउट होके निकलते हैं और अगर कोई भी स्कूल में अगर एडमिशन हो जाती है तो यूजुअली उनको लोअर ग्रेड्स में पहले सिखाने के लिए दिया जाता है और फिर कुछ महीनों के बाद या साल के बाद फिर उनको हायर ग्रेड्स में सिखाने के लिए देते हैं। ऐसा होता है क्या सर?
होता है ऐसे होता है मैम। क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग में जाते हैं, लोगों का ऐसा माइंड सेटअप है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना सिखाना ये इजी टास्क है, ऐसा लोगों को लगता है। यानी
ओ
जो इंस्टीट्यूशन है, जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ऐसा लगता है कि जितना छोटा बच्चा उतना उसको सिखाना आसान है,
जी।
सिंपल टास्क है। तो ऐसी वो चीज़ें होती है, लेकिन मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू मी, ये बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल ये है कि जितना छोटा बच्चा उतना ही मोर क्या बोलेंगे उसको, ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत वहाँ पे है छोटे बच्चों के ऊपर।
राइट राइट ओके। और सर मतलब सब पर आप कह रहे कि आपको पता नहीं है, लेकिन सर कुछ अंदाजा होगा आपको कि कितने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स मिली होगी आपके यहाँ से जो पास आउट होके गए हैं?
गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ही कम होगी मैम, शायद मेरे ख्याल से 10 और 15% बच्चे ऐसे हैं कि जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती होगी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए।
और प्राइवेट स्कूल्स?
प्राइवेट्स में तो ज़्यादा है, प्राइवेट्स
ज्यादा है।
में यानी अब हर कुछ डिस्टेंस पे प्राइवेट स्कूल्स है, तो वहाँ पे जरूरत ज्यादा है बच्चों की। तो जिनको फिर ये गवर्नमेंट का नहीं मिलता है तो वो चूज कर लेते हैं
राइट। और
प्राइवेट
सर
स्कूल्स को।
कितनी स्टार्टिंग सैलरी होगी सर टीचर्स की प्राइवेट जो स्कूल्स में लगभग?
लगभग मैम 5 to 10,000 के नीचे, या फाइव टू टेन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं दी जाती।
अच्छा। और सर ये प्राइमरी सेकेंडरी के हिसाब से डिवीजन है कि सबको ही इतना इतने से ही स्टार्टिंग होता है?
नहीं, जो प्राइमरी सेशन है, प्राइमरी जो सेक्शंस होते होंगे उसके ऊपर थोड़ी कम दी जाती होंगी, और जो सेकेंडरी के लिए जो पढ़ाते हैं
जी
तो उनको थोड़ी ज्यादा पेमेंट या सैलरी जो भी है वो मिलती होंगी।
अच्छा। और सर ये बच्चे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं क्या, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ऐसे किसी में उनको मिलता है कि सिर्फ स्कूल्स में ही जाते हैं ये पढ़ाने के लिए?
ज्यादातर स्कूल्स, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो एनजीओ का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, स्कूल्स में ज्यादातर बच्चे स्कूल्स ही ऑफर करते हैं, और उनका जो पिन इंटरेस्ट है वो स्कूल की तरफ होता है। ऐसे
ओके।
बहुत कम बच्चे होंगे जो दूसरा कुछ भी हटके डिफरेंट करना चाहते होंगे या करते होंगे।
अच्छा। तो सर आपके हिसाब से, आपके और आपके बाकी जो कलीग्स है उन आप लोगों के हिसाब से क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करते हो बच्चों को लेकर, मतलब इंस्टीट्यूशन वाइज कि मतलब अटेंडेंस हो गया या बच्चे रेगुलरली नहीं आते या अकेडेमिकली इतने अच्छे नहीं है, तो क्या चैलेंजेस आपको लगता है फेस करते हैं?
अगर देखा जाए मेरे यहाँ पे तो रिगार्डिंग अटेंडेंस, अटेंडेंस तो मेरे यहाँ पे फुल होती है अटेंडेंस, 100% अटेंडेंस हर एक बच्चे की होती है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुआ, कुछ बच्चों को नहीं आया, तो फिर कॉल किया जाता है उनके पेरेंट्स को, और विद द पेरेंट्स उनको इनवाइट किया जाता है स्कूल में, और बाद में पूछा जाता है कि क्यों नहीं आया यहाँ पे, ऐसे क्या हुआ था। तो इसीलिए 100% अटेंडेंस वापस जरूरी है, और आते हैं 100% बच्चे।
ओके, तो लेकिन और कोई समस्या आपको लगती है जो आप और आपके अदर फैकल्टी फेस करते होंगे
अटेंडेंस के रिगार्डिंग?
नहीं नहीं, अटेंडेंस नहीं, जनरली अटेंडेंस मैंने एज एग्जांपल कहा था।
ओके ओके ओके,
लेकिन अगर कोई और चैलेंज है जो आप फेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग, तो वो आप शेयर कर सकते हैं।
ओके, चैलेंजेस फ्रैंकली अगर बोलूं मैम, तो हमारा ये जो कोर्स है तो अगर एक अच्छा टीचर आपको बनाना है, अच्छा टीचर अगर आपको साइंटिफिकली उसको आपको बनाना है, तो वैसे एफर्ट्स हम सबको लेने पड़ेंगे
जी।
क्या क्या लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए, कौन से इनिशिएटिव बच्चों को देने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को, यानी एक अच्छा टीचर बनने के लिए थोड़ी कम मिलती है मेरे ख्याल से। फॉर एग्जाम्पल अभी सीसी मूल्यांकन करने के लिए, असेसमेंट बच्चों की करने के लिए फर्स्ट टू एट तक सीसी नाम का एक है, 2010 का एक सर्कुलर था गवर्नमेंट का, तो उसके रिगार्डिंग हम सीसी असेसमेंट करते हैं बच्चों की। लेकिन डीएड में बच्चों को हम खाली सीसी क्या होता है, सीसी कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके कौन से अच्छे गुण है, कौन से उसका दोष है, हम खाली इतना ही बताते हैं बच्चों को
जी।
यानी पूरा जो सीसी का पूरा पैटर्न है या ऑल ओवर सीसी क्या है, ये वहां तक हम बच्चों को नहीं लेके जाते, यानी इन स्टूडेंट टीचर्स को। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम अभी लिया था मेरे कॉलेज में, कि मैंने प्रॉपरली जो हेड टीचर्स है दूसरे स्कूलों के, तो उनको बुलाया था वहाँ पे हर एक क्लास में, और पूरा एक एक दिन जो पूरे उनके रिकॉर्ड्स, सीसी के रिकॉर्ड्स वगैरह पूरा पूरा पूरा, तो फिर उन्होंने वो अटेंड किया था सब बच्चों ने, और पूरा उनको फिर पता चला कि सीसी एक्चुअल में क्लासरूम में बच्चों के असिस्टेंट में कैसे लिया जाता है। तो जो कंटेंट है वो कंटेंट इन द शॉर्ट कंटेंट हम थोड़ा कम देते बच्चों को, और जो अपग्रेड वाला जो कंटेंट है वो भी हम नहीं दे पाते बच्चों को मेरे ख्याल से।
Right, okay.
जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट लर्निंग आउटकम्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन लर्निंग आउटकम्स के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक, कोई भी इंट्रोडक्टरी एक पैराग्राफ भी वहाँ पे नहीं है। तो ये थोड़े चैलेंजेस वहाँ पे आ जाते हैं। तो फिर कुछ लोग देखते हैं फ्यूचर में, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, तो ऐसे भी इनिशिएटिव वहाँ पे लेते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं लेते। तो एक प्रॉपर फ्यूचर वाला टीचर हम नहीं बना रहे हैं या नहीं बना सकते, तो ये चैलेंजेस हो सकते हैं।
ओके, और सर मतलब आपके टेन्योर या आपके सैलरी से रिलेटेड कोई चैलेंजेस है क्या?
एक्चुअली मेरी सैलरी तो मेरा जो डिप्लेसमेंट है वहां से हो जाती है, हमारे तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस चल रहे हैं मैम। 8 महीने हो गए हमारी सैलरी नहीं अभी।
अरे बाप रे।
यस मैम, यस मैम, थोड़े इश्यू है
कुछ तो भी। कहां से डायरेक्ट होती है
हमारी डाइट की मैम? 60% सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और 40% हमारा जो होम गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट तो हमारा 40% का जो शेयर है वो खर्च कर चुके हैं हमारे सैलरी के ऊपर, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ तो भी इशू है, तो वो सैलरी नहीं ये रिलीज कर रहे वहाँ से 60%।
ओह
करके हम पूरा 8 महीने हो गए, अभी तक सैलरी नहीं है।
तो ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है कि अक्रॉस हो रहा है?
नहीं, ऑल ओवर महाराष्ट्र, पूरे
ऑल ओवर महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में हमारे डिपार्टमेंट के सब।
और सर आप कह रहे थे कि एनसीटी का भी अफिलिएशन होता है, तो उनके रूल्स और रेगुलेशंस भी होते होंगे, तो उनके तरफ से कोई चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है कि वो सब ठीक है?
ऑल इज वेल रिगार्डिंग टू एनसीटी। वो खाली मैम रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या होने चाहिए, क्या टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो जस्ट एक रेगुलेटिंग बॉडी है, वो रेगुलेट करते हैं। लेकिन फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि आप फैसिलिटी हो प्रॉपर।
प्रोवाइड
बच्चों को
करना।
हम कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस सिखा रहे हैं, और अगर स्कूल में या हमारे डीएड कॉलेज में एक ही कंप्यूटर नहीं है तो कैसे सिखाएंगे बच्चों को कंप्यूटर साइंस। ये ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ये नहीं है हमारे स्टेट में, अपने स्टेट में।
सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं डीएड में? ज्योग्राफी। हेलो।
डीएड ऐसा स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरी तरफ, लेकिन सारा सिखाता हूँ बच्चों को।
अच्छा, अब सभी सिखाते। ओके सर, आपने ये,
कोई
हेलो
भी सब्जेक्ट। हाँ यस मैम।
सर, आपकी आवाज कट रही थी, क्या कह रहे थे आप?
नहीं, सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि
जी जी
कौन सा सब्जेक्ट सिखाया। वैसे प्रॉपर कोई सब्जेक्ट मेरी तरफ नहीं है सिखाने के लिए, क्योंकि
ओके
मेरे पास वो जस्ट चार्ज है मेरी तरफ। वो मेरा जो रेगुलर मेरा जो काम है वो दूसरा है,
जी
वैसा
जी
एक ही चार्ज है मेरे पास। वैसे चार चार्ज है, यानी चार जगहों पे एक दिन में काम मुझे देखना पड़ता है।
अच्छा। और सर ये
तो
अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना,
यस मैम,
उसमें उन्होंने बीएड को अभी 4 साल में करने का सोच रहे हैं,
यस मैम।
तो आपका क्या राय है उसके ऊपर?
नहीं, ये जो भी लेटेस्ट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है सामने,
जी
जिसका इम्प्लीमेंटेशन इस साल में शायद करने वाले हैं, तो
जी
उसकी उसका कोई डीएड का कैसा होगा, और ये डीएड इनका क्या काम हो सकता है वहाँ पे। इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज है, जैसे बीएड हो गया, यानी बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड, ऐसे बताया गया है। लेकिन डीएड का कोई मेंशन ही नहीं उसमें। और
राइट।
जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है एज अ टीचर के लिए, वो वहाँ पे उन्होंने बीएड बताई है। बीएड तो डीएड तो मेरे ख्याल से ये अब राम भरोसे है।
अच्छा, ओके सर। ठीक है सर। और अभी क्योंकि कोविड पिछले 1-1.5-2 साल से है, तो आपके यहाँ पे डीएड का जो टीचिंग लर्निंग एकेडमिक प्रोसेस है वो कैसा अफेक्ट हुआ है सर? मतलब क्या परेशानियां आई आपको ओवर द लास्ट 1-2 इयर्स बिकॉज ऑफ कोविड?
वैसे तो बहुत सारी परेशानी है मैम, क्योंकि बच्चों के पास ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम उनको अवेलेबल कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन प्रेफर ही नहीं करते। किसी के पास मोबाइल नहीं होता है, किसी के पास मोबाइल होता है लेकिन नेटवर्क नहीं होता है, तो वो ज़्यादातर अच्छा नहीं हुआ एकेडमिक इन 2 सालों में या एक साल में। लेकिन फिर भी जितना बन सकता है उतनी कोशिश हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल भी वो हमने किए हैं फिलहाल।
ओके, तो सब कुछ मतलब आप जूम पे या ऐसे सब पे ही क्लासेस ले रहे हैं फिर अभी?
हाँ यस मैम।
ओके सर। और इकोनॉमिक या मेडिकल ऐसा कुछ अगर बच्चों को लॉस होता है तो वो कवर करने के लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ किया है क्या?
मुझे आवाज नहीं आ रही
हेलो
आवाज नहीं आ रही मैम आपकी प्रॉब्लम।
सर, अभी आ रही है?
हाँ यस मैम, हाँ अभी आ रही है।
तो मैं पूछ रही थी कि इकोनॉमिक या मेडिकल अगर बच्चों के कुछ लॉसेस हुए हैं तो वो कवर करने के लिए यूनिवर्सिटी कुछ कर रही है क्या?
उनके आपके इकोनॉमिकल कौन से हो सकते हैं मैम, अफेक्ट कौन सा हो सकता है बच्चे
मतलब अगर फैमिली में किसी की नौकरी चली गई हो तो उसके वजह से अगर बच्चा ऑब्वियसली पढ़ने के लिए ना पा रहा हो क्योंकि घर पे पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये तो एक एग्जांपल हो गया, लेकिन ऐसे अगर सिचुएशंस में यूनिवर्सिटी ने कुछ मदद की है क्या बच्चों को ताकि उनका पढ़ाई ना छूटे?
नहीं मैम, ऐसा कुछ भी सिस्टम में है ही नहीं कि अगर बच्चा वो इकोनॉमिकल से या हेल्थ से अगर वो जूझ रहा है उसको हमें सपोर्ट करना है, ऐसे कोई सिस्टम में हमारे तजवीज है ही नहीं।
ओके ओके। और सर आपने कहा कि यू नो इंटरनेट हो गया या ऑनलाइन चीजें आपने अवेलेबल करके दी बच्चों को, तो ये डिवाइसेस बच्चे अफोर्ड कर पाए, मतलब उन्होंने खुद ने ली है कि आपने यूनिवर्सिटी ने मदद की है उनको लाके देने के लिए, या इंटरनेट हो गया, बैंडविड्थ हो गया, ये कैसे अफोर्ड किया आपके बच्चों ने?
नहीं, खुद ने मैम, खुद मैंने एक्चुअली मैंने और कुछ एनजीओस थी तो उन्होंने भी अच्छी हेल्प की मुझे। और एक्चुअली मेरे पास 3-4 चार्ज है तो उसके ऊपर बहुत सारे टीचर्स भी है, टीचर्स है, बाकी स्टाफ भी है, तो हम थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके वो ब्रॉडबैंड, एक आमदार थे हमारे यहाँ पे जगताप, उनके तरफ से हमने कुछ कंप्यूटर्स की हेल्प ली थी। दूसरे एक बच्चू कड़ू है राज्य मंत्री हमारे स्टेट के, तो उन्होंने भी थोड़ी मदद की थी, तो ऐसे इनसे उनसे मदद करके हमने वो सब किया था आईसीटी बेसिस। वहाँ पे प्रोजेक्टर नहीं था तो हमारे डाइट की तरफ से प्रोजेक्टर हम वहाँ पे लेके गए थे, यानी परमानेंट वो सारी ये नहीं थी, जैसे हम बोलते हैं ना उसनवारी करना, तो वो उसनवारी से हुआ थे बहुत सारी चीजें वहाँ पे।
और सर फैकल्टी ने कैसे कोप किया? आपके यहाँ पे कितने स्टाफ होंगे सर?
मेरे पास 4 लोग हैं मैम, लेकिन वो सारे सीएसबी बेसिस पे हैं।
सीएसबी मतलब
क्लॉक हावर बेसिस।
परमानेंट कोई भी नहीं है सर?
परमानेंट एक है वो म्यूजिक वाले है।
अच्छा ओके ओके ओके। तो सर ओवरऑल मतलब आप क्या कहना चाहते हो, कोविड ने कैसा प्रोग्राम को अफेक्ट किया है?
एकेडमिकली तो बहुत अफेक्ट हुआ है, बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। ओके। ये पूरा ही सेशन जितना भी हो सकता है उतनी कोशिश हमने की कि बच्चों को प्रॉपर एकेडमिक मिले, लेकिन 100% बच्चे उसमें से उनको लाभ मिला हो ऐसा नहीं हुआ है। कुछ बच्चे रहे उनका पीछे रहा है, और जो फेस टू फेस जब बच्चे आते हैं तो पूरा वो प्रॉपर तरीके से होता है अकॉर्डिंग टू मी, से ऑनलाइन वगैरह से उतना वो इफेक्टिव जो हमारा कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता है।
ओके,
तो अफेक्ट हुआ है बुरी तरह से, ये अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना।
सर मैं पूछना चाहती हूँ मतलब डीएड के कॉलेजेस रूरल महाराष्ट्र में काफी कम है क्या, मतलब या बंद होकर अभी डीएड होता ही नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या पिछले कुछ सालों से?
यस मैम, पहले बहुत ज्यादा थे
जी,
पहले बहुत ज्यादा थे, फिर बहुत पहले करने के लिए ज्यादा कुछ ये नहीं था, यानी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी इंजीनियरिंग की, मेडिकल हो चाहे अदर सेक्टर्स में हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डीएड प्रेफर करते थे कि डीएड में जाए टीचर की नौकरी करे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि रिक्रूटमेंट हुई नहीं टीचर के लिए 2010 से, लास्ट टाइम 2010 में हो गई थी महाराष्ट्र में एक बार रिक्रूटमेंट, लेकिन उसके बाद में हुई नहीं, तो फिर जो आफ्टर 12th जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी जो डायरेक्शन है वो बदल दी, दूसरी तरफ वो गए, और उसी वजह से जो एडमिशन्स है डीएड करने वाले बच्चों वो कम हो गए।
तो
अभी बहुत सारे कॉलेजेस बंद है बिकॉज ऑफ एडमिशंस.
काफी जनों से मैं पूछ रही थी क्योंकि मुझे डीएड के प्रोफेसर ही नहीं मिल रहे थे बात करने के लिए. तो कई सारे लोगों ने मुझे ये सेम बताया कि डीएड के कॉलेजेस बंद हो रहे हैं. बीएड के काफी मिल रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन डीएड के बहुत कम मिल रहे हैं, बहुत कम. तो मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूँ कि तो आप कह रहे 2010 से एडमिशन होना ही बंद हो गया है बच्चों का डीएड में, और
नहीं,
अभी
2010 से हम रिक्रूटमेंट, जो टीचर
रिक्रूटमेंट,
रिक्रूटमेंट करती है
अच्छा
ना स्टेट गवर्नमेंट, वो हुई नहीं अभी तक. तो इसलिए बच्चे फिर दूसरी तरफ गए.
राइट राइट. लेकिन अभी भी है, लेकिन काफी कम है डीएड के कॉलेजेस.
बहुत कम, बहुत बहुत कम.
ठीक है सर. थैंक यू सो मच, आपने आपका टाइम दिया इस इंटरव्यू